नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ वार्ता के दूसरे दौर के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। श्रीलंका में भारतीय समुदाय के लिए प्रवासी नागरिक ओसीआई योजना को छठी पीढ़ी तक बढ़ाया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। बुल्गारिया में पिछले 5 वर्षों में 8वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी। और दक्षिण अफ्रीका ने डरबन में दूसरे T20 महिला क्रिकेट मैच में भारत को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ईरान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल कल रात इस्लामाबाद पहुंचेगा।
व्हाइट हाउस ने कहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और इसमें राजदूत स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनेर शामिल होंगे। यह बातचीत मंगलवार को निर्धारित है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर इस बातचीत में कोई समझौता नहीं होता तो वह ईरान के पुलों और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि समझौते के अधिकतर हिस्सों पर ईरान सहमत हो चुका है। युद्ध विराम की बातचीत का पहला दौर अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य और ईरान के परमाणु क्षमता कार्यक्रम को लेकर गतिरोध की वजह से खत्म हो गया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्रीलंका की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। उपराष्ट्रपति ने कोलंबो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक महत्वपूर्ण घोषणा में प्रवासी भारतीय नागरिकों के कार्ड को छठी पीढ़ी तक के भारतीयों को उपलब्ध कराया गया है।
भारत ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल समुदाय के साथ अपने राजनीतिक और भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने का स्पष्ट संकेत दिया है। श्रीलंका के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ओसीआई योजना के बड़े विस्तार की घोषणा की है। अब इसे छठी पीढ़ी तक बढ़ाया जाएगा और श्रीलंका द्वारा जारी किए दस्तावेजों को भारतीय मूल के प्रमाण के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। विकास को नई गति देते हुए सीलोन स्टेट वर्कर्स एजुकेशन ट्रस्ट कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्तियों का दायरा बढ़ाया गया है। साथ ही भारतीय आवास परियोजना के तीसरे चरण के तहत बने अंतिम 145 घरों का भी हस्तांतरण किया गया, जिससे ये चरण पूरा हो गया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका और प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनियमरसूरिया के साथ व्यापक वार्ता की, जिसमें विकास सहयोग और चक्रवात के बाद सहायता की समीक्षा की गई। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति की यात्रा के दौरान पूर्वी प्रांत में दित्वा के बाद शुरू होने वाली बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता के तहत पहली 6 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और साथ ही एक 4 मंजिला मेडिकल वार्ड परिसर के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन को फाइनलाइज किया गया। कवि सुब्रमण्य भारती को उद्धृत करते हुए संदेश साफ था, ये समुदाय भारत और श्रीलंका के बीच एक जीवित सेतु बना हुआ है। विश्व दर्पण के लिए कोलंबो से मैं अहमद मुईन फारूकी।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जाय म्यूंग आज 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति ली की यह पहली भारत यात्रा है।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि राष्ट्रपति ली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। इनमें पोत निर्माण, व्यापार, निवेश, एआई, सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी, आम जनता के आपसी संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल है। राष्ट्रपति ली इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर राष्ट्रपति ली से शिष्टाचार भेंट करेंगे। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
ईरान के नागर विमानन प्राधिकरण ने सूचना दी है कि ईरान के पूर्वोत्तर प्रांत खेरासान राजवी स्थित महशद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। प्राधिकरण ने बताया कि घरेलू उड़ानों के लिए टिकटों की बिक्री की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। 28 फरवरी को शुरू हुए अमरीकी और इसराइली संयुक्त हमलों के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिससे पूरे देश में नागरिक उड्डयन परिचालन ठप हो गया था। विश्वदर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्वदर्पण में आपका फिर स्वागत है। बुल्गारिया में 8वीं बार संसदीय चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव पिछले वर्ष दिसंबर में हुए जन प्रदर्शनों के बाद पिछली रूढ़िवादी सरकार को गिरने के कारण हो रहे हैं। मतदान आज रात भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे तक चलेगा। इसके तुरंत बाद एग्जिट पोल जारी होने की संभावना है। आधिकारिक परिणाम कल घोषित हो सकते हैं। दिसंबर के प्रदर्शन में मुख्य रूप से लाखों युवा सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शनकारियों ने व्यापक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की मांग की थी। 65 लाख की आबादी वाले इस देश को 2021 से लगातार राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कोई भी सरकार इन प्रदर्शनों के कारण एक साल से अधिक समय तक अपना शासन पूरा नहीं कर पाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि जलवायु, वायु प्रदूषण और मौसम की निगरानी संबंधी अध्ययन के लिए डिजाइन किए गए G20 उपग्रह को 2027 में प्रक्षेपित किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत एक रॉकेट का प्रयोग करके 100 से अधिक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने में सफल रहने वाला विश्व का पहला देश है। डॉक्टर नारायण ने कॉलेज ऑफ इंडिया में कहा कि इसरो वर्ष 2040 तक चांद पर मानव को भेजने की दिशा में काम कर रहा है।
इसरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गगनयान प्रोग्राम।
इसरो गगनयान कार्यक्रम चला रहा है जिसका उद्देश्य मानव युक्त मिशन को अंतरिक्ष में भेजना है। वर्ष 2040 तक भारत रॉकेट और उपग्रह प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और मानव अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में किसी भी अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाले देश के बराबर होगा। वर्ष 2040 तक भारत चंद्रमा पर उतरेगा और वहां पर तिरंगा फहराएगा। ये उपलब्धि दर्शाएगी कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में एक विकसित देश बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।
उत्तर कोरिया ने कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें सिनेपो क्षेत्र में दागी गई। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए तैयार है और अमेरिका तथा जापान के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये घटनाक्रम संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था द्वारा उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम में बहुत तेजी से प्रगति करने की चेतावनी के कुछ दिनों के बाद सामने आया है। दक्षिण कोरिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में बार बार हो रहे मिसाइल परीक्षणों पर चिंता व्यक्त की। उत्तर कोरिया से ऐसे कार्यों को तुरंत रोकने का आग्रह किया गया है। अमरीका और जापान ने भी इन मिसाइल परीक्षणों की पुष्टि की है। साध्वी सेल फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता बन गई हैं। उन्हें मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में कल राजनंदिनी दूसरे और श्री अवदेता तीसरे स्थान पर रही। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का अनुबंध एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये फैसला वर्ष 2027 के एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। अगरकर के नेतृत्व में अक्टूबर 2023 में से मार्च 2026 के बीच चयनित भारतीय टीमों ने 4 आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। इसमें 2 टी20 विश्वकप और 1 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की जीत भी शामिल है। भारत के सेल्वा प्रभु ने एथलेटिक्स सीजन में पुरुषों की ट्रिपल जंप का खिताब जीत लिया है। सेल्वा ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 16.61 मीटर की विजयी छलांग लगाकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के दौरान सेल्वा ने 16.57 मीटर और 16.37 मीटर की छलांग भी लगाई। डरबन में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टी20 महिला क्रिकेट मैच में भारत को 8 विकेट से हराया। भारत के 148 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 17 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका 2-0 से आगे है। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 255 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 8 ओवर में 1 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। वहीं आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के 156 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 2 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ वार्ता के दूसरे दौर के लिए अमरीकी प्रतिनिधिमंडल कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। श्रीलंका में भारतीय समुदाय के लिए प्रवासी नागरिक OCI योजना को 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाया जाएगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 3 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। बुल्गारिया में पिछले 5 वर्षों में 8वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी। और दक्षिण अफ्रीका ने डरबन में दूसरे टी20 महिला क्रिकेट मैच में भारत को 8 विकेट से हरा करके सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।